जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
ओम शांति। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविपीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाददम् भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन हे प्रभु आपकी कथाओं का अमृत तप्त जीवन को शीतलता देने वाला है। महान कवि ऋषियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है जो सारे पापों का नाश करता है। श्रवण करने वालों के लिए वह मंगलकारी है और अत्यंत पवित्र है। वे महापुरुष जो इस अमृतमय कथा का पृथ्वी पर विस्तार करते हैं, वास्तव में वह सबसे बड़े उदार है। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय 31 श्लोक 9। भागवत के गोपिका गीतम में गोपिया भगवान से कह रही है कि ये जो तुम्हारी कथा है कैसी है, अमृत सी कथा है। कवियों ने जिसका गायन किया है, ऋषियों ने जिसका गायन किया है, हमारा जीवन तप रहा है और इस तपते जीवन के लिए तुम्हारी कथा कैसी है, शीतल की तरह, शीतल जल की तरह है, अमृत की तरह है। तप कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कलम शापहम। हमारे जीवन में जो दाग है, जो कलंक है, जो धब्बे लगे हुए हैं विकारों के, पाप के, उन सबको क्या करने वाला है, ये धोने वाला है। कवि विरडितम कलम शाप तप्त जीवनम श्रवण मंगलम। कान के लिए क्या है ये, श्रवण के लिए मंगलकारी है। इससे अधिक मंगलकारी इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान की वाणी, परमात्मा की कहानी, उसकी मूल्यों का अध्ययन जीवन का परम लक्ष्य हो। श्रवण मंगलम, श्रीमदादतम भूरिदा जना। और वो आत्माएं भाग्यवान है, कौन, जो श्रवण तो करते ही है परंतु दूसरों को जो सुनाते हैं। गीता में लिखा है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो मेरी महिमा सबको सुनाते हैं। तो उसकी जो वाणी है, उसके जो शब्द है, एक एक शब्द में ऊर्जा है, शक्ति है आत्मा को बदलने की। तो अभी हमने तीन मूल्यां देखी और कल की भी तीन मूल्यों के प्रश्न रिवाइज किए, तो 88 की टोटल 21 मूल्यां है। रोज अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन होता रहे। दिस शुड बिकम फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ मिलकर अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, एक तरंग उत्पन्न होती है और ये समय फिर नहीं आएगा। फिर से वापस हम 87 की मूल्यां रिवाइज नहीं करेंगे, फिर से 85 के पीछे कभी नहीं जाएंगे, शायद समय नहीं होगा। इसलिए अभी जब संगठित अध्ययन चल रहा है, इसलिए रात का जो रीडर्स क्लब है 8 बजे, उसमें भी सबको छुड़ना है। और रोज जहां मुरली रिवाइज हो रही है, इंग्लिश में तो सारी रिवाइज हो चुकी है, अभी केवल प्रश्न, उन प्रश्नों को केवल पढ़ना नहीं है, पूरी मुरली पढ़नी है। तो अभी हमने देखा 18 जनवरी की, 22 की और 26 की, 10-10 प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न। अगर पूरी मुरली नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम ये 30 महावाक्य भी पढ़ लो। और केवल पढ़ना नहीं है, क्या करना है, उसका चिंतन करना है, उसे अमृत की तरह अनुभव करना है कि ये मेरे लिए क्या है, अमृत है। जन जन से आत्मा प्यासी है, जन जन से भटक रही है, संसार के किसी व्यक्ति से उसे तृप्ति नहीं मिल सकती, किसी धन से, किसी पद से, किसी पोजीशन से, किसी संसार की प्राप्ति से। संसार का नाम मान शान सब धुआ है। आज है, कल नहीं है, और उसी में कितना अहंकार होता है व्यक्तियों को। एक मेंढक को 1 रुपया मिल गया, फिर उसने क्या किया, उस रुपये को अपने बिल में छिपाया। थोड़ी देर के बाद एक हाथी वहां से गुजरा कुचलते हुए, उसके बिल को और उसके सिक्के को, और मेंढक को इतना क्रोध आ गया, बाहर निकालकर हाथी को ललकार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सिक्के के ऊपर चल रहे हो। उस पैसे ने उसमें इतना घमंड भर दिया कि वो ये भी भूल गया वो किसे ललकार रहा है, और ये भी भूल गया वो स्वयं कौन है। माया का सिक्के, माया का सिक्का है, चाहे पैसे, चाहे प्रसिद्धि, फेम, सब बांधते हैं, सब गिराते। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धन कौन सा है, ज्ञान का धन। सबसे बड़ा खजाना है संडे की मुरली। इन खजानों को बढ़ाओ 3 बिंदियां लगाकर। खुशी सबसे बड़ा खजाना है। व्यक्ति के पास अपना घर नहीं होता है, वो सोचता है मुझे अपना घर बनाना है, कब तक किराए के घर में रहूंगा। और अपना घर बनाने के लिए क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बेचैन रहता है, सुबह काम करता है, शाम को काम करता है, रात को काम करता है, 5 साल तक काम करते रहता है, और 5 साल के बाद खुद का घर बन जाता है। क्यों घर चाहिए, ताकि चैन की नींद आ सके, चैन का जीवन हो सके। परंतु जब घर बन जाता है तो ये जो 5 साल के बेचैनी के संस्कार है, उन बेचैन संस्कारों के साथ ही उस घर में प्रवेश करता है। तो घर मिलने के बावजूद भी बेचैनी साथ में चल रही, ट्रेडमिल कहा जाता है साइकोलॉजी में। व्यक्ति है, सोचता है मेरे पास पैसा हो जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, इसलिए मैं दुखी हूं, दुखी हूं, दुखी हूं। ये ग्राफ ऐसा है, एक दिन अचानक लॉटरी लग जाती है, और लॉटरी लगते ही उसकी खुशी का पार नहीं, एकदम यहां ऊंचा पहुंच जाता। परंतु कुछ समय के बाद खुशी का ग्राफ वापस वहीं आ जाता है, पैसे होने के बावजूद भी जैसे थे। आज प्रसिद्धि नहीं है, आज कोई पद नहीं है, आज कोई पदवी नहीं है, आज करियर लड़खड़ा रहा है, सोचता है मुझे वो मिल जाए, और वो मिलने के लिए सब प्रयत्न करता है, और जब करते 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 वो मिल जाता है, तो ये जो बेचैनी है वो बेचैनी कहाँ जाएगी। संस्कार तो साथ में चलते हैं, और सब कुछ मिलने के बाद में भी बेचैन ही व्यक्ति रहता है, क्योंकि तृप्ति बाहर नहीं है। परमात्म प्रेम में, परमात्म मदद में, परमात्म छत्र छाया में, परमात्म वाणी में, परमात्म उपहार में, परमात्म साथ में परम तृप्ति है। इसलिए गोपिया क्या कह रही है, तव कथम मृतम तप्त जीवनम कविबिरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणंति ते भूरिता जना। धन्य है वो लोग केवल इस धरती पर जो तेरी कथा को पढ़ते हैं, तेरे वचनों को पढ़ते हैं, और धरती पर बिखेरते हैं। इसलिए मुरली खुद पढ़नी है, चर्चा करनी है, एग्जाम देनी है, ताकि बुद्धि में केवल मुरली ही मुरली गूंजती रहे। भगवान के महावाक्य जहां गूंज रहे हो, वही तो वास्तव में मधुबन है। तो ये 3 मुरली, और अभी जो 30 प्रश्न, उनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस और टेंशन, बेचैनी होगी। फिर उस एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने के बाद में भी बेचैनी कहाँ जाएगी, बेचैनी तो साथ में चलेगी। इसलिए इसका आनंद लेना है। आया मुरली एथलीट, मुरली इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स, स्टडी टाइम इज स्पोर्ट्स टाइम। स्टेडियम, हम स्टेडियम पर हैं, खेल चल रहा है। तो 3 मुरलियां, 30 प्रश्न जो अभी सुनाए, इनको पढ़ना है कम से कम, 30 लाइन तो पढ़ लो, बाकी नहीं तो। तो अमृत वेले की इस भट्टी का आज का कितवा दिन? 64th। कल थोड़ा आगे पीछे हो गया था, आज का कल पढ़ लिया था। होता है बड़ी बड़ी भट्टियों में छोटी छोटी। तो आज के बाबा के महावाक्य 64th हुआ ये दिन। भिन्न भिन्न तिलक लगाओ, कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। भक्त तिलक क्यों लगाते हैं? सभी से प्रश्न है। 10 बातें बताओ, भक्त क्यों लगाते हैं? भक्त ज्ञान का भूल जाओ, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहती है और पहचान है वो। हर एक शैव का तिलक अलग, शाक्त का तिलक अलग, वैष्णव का तिलक अलग, गणपत्य का तिलक अलग। जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग सांप्रदाय के लोग हैं, सबका अपना अपना एक विशिष्ट तिलक है। तो वो तिलक उस भक्त की पहचान भी है। तो एक कारण है तिलक लगाने का, पहचान। दूसरा, हाँ, निरंतर स्मृति रहती है, और ये स्मृति रहती है कि हम कौन है। हम वो नहीं है जो संसार में खोए हुए लोग हैं, हम भक्त हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ईश्वर से जुड़ने का अटूट एक प्रतीक है, वो आस्तिकता का प्रतीक है। सफलता, सफलता भक्त को ठंडक होती है। दूसरा, हमारे शरीर में जो भी नाड़ियां है वो सब कहते हैं यहाँ मिलती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए। और दूसरा, तिलक से नेगेटिव एनर्जी दूर जाती रहती है। उनके इष्ट का आशीर्वाद मिलता है। और भक्त तिलक क्यों लगाते हैं? हाँ, तिलक जब लगाते हैं तो दूसरों की भावना भी श्रेष्ठ रहती है, नहीं तो दूसरे हमारे शरीर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और भक्त का तो संबंध एक परमात्मा से होता है, उसके भगवान से, और श्रद्धा का प्रतीक है, और सबसे अलग दिखाई देने के लिए। और तिलक समर्पण का भी प्रतीक है, वो ये दर्शाता है कि इस भक्त ने अपना जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित किया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ईश्वर अर्पिता, निवेदिता, समर्पिता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसका वो प्रतीक है, किसी का ऐसा तिलक, किसी का ऐसा तिलक। कितने प्रकार के तिलक है, किसी का यहाँ से चालू होता है नाक से ऊपर तक, किसी का पूरा ही पूरा तिलक होता है। जैसे एक सुहागिन होती है तो वो तिलक लगाती है, वो उसे क्या याद दिलाता है? वो साथ है, वो किसी के साथ है। वैसे ही भक्त को क्या याद दिलाता है तिलक? कि ये तिलक परमात्मा साथ का प्रतीक है, शरणागति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, साथ का प्रतीक है। ये घोषणा है कि हम भक्त हैं, दुष्प्रभाव से मुक्ति मुक्त रहने का प्रतीक है, और कर्तव्य का बोध कराता है। और क्या कराता है? उम्र बढ़ाता है। जितना बड़ा तिलक उतनी बड़ी उम्र। तिलक आत्मा का श्रृंगार है। तिलक क्या है? आत्मा का श्रृंगार, चाहे भभूति या तो राख या तो चंदन, कितने अलग अलग प्रकार के तिलक है संसार में। आत्मिक पहचान की भी वो प्रतीक का वो प्रतीक है। और तिलक कब लगाते हैं? मंदिर जाने से पहले। अनुशासन का भी प्रतीक है, पूजा से पहले, भक्ति का प्रतीक। और ईश्वर के प्रति हमारी जो निष्ठा है, वफादारी है, उसका भी प्रतीक है तिलक। वो अलग, ये भक्त की चलती बात है। एक तो है भक्त का, एक है सुहागिन का, एक है वो योद्धाओं का तिलक, वो अलग, वीरों का तिलक धार्मिक। तो कोई पहचान, तो रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। कौन सा तिलक? कि हम साधारण नहीं हैं, हम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे, हम वो नहीं सोच सकते जो संसार के लोग सोच रहे, हम वहां नहीं भाग सकते जहां संसार के लोग भाग रहे। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती है वे सात का तिलक लगाती है। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगी, अगर युगल नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। यह सात का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाती हो, कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है। लगा दे तो है सभी, पर क्या होता है, जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम डैश है, हम डैश है, कंबाइंड है। इस साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। तो आज दो सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है साथ और दूसरा सूत्र है कंबाइंड। हम भगवान के साथ है और दूसरा मैं उसके साथ संयुक्त हूँ, एक हूँ, एकाकार हूँ, कंबाइंड हूँ, अलग नहीं, दो नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैत, एक, जॉइंट, कंबाइंड, योग। तो ये अनुभव आज दिन भर करना है। तो आज तीन होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क, अपनी ही आवाज़ में एक वॉइस मेल ग्रुप पर भेजना है, रिकॉर्ड करके, बाबा और मैं कंबाइंड हूँ। क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाप और मैं कंबाइंड हूँ। एक ही बार, तीन बार बोल दो, मैं बाप और मैं कंबाइंड हूँ। स्वयं को ही याद दिलाते रहना है। एक तो कभी याद दिलाने मैं कंबाइंड हूँ, और कभी याद दिलाना है मैं उसके साथ हूँ। दोनों का ही अभ्यास। दूसरा, ये इधर एक चित्र है, दो हार्ट्स, जैसे सात का तिलक, दो दिल है, एक हो गए, वो अलग नहीं रहे, वो दोनों क्या हो गए, एक। और तीसरा, एक अद्भुत प्रयोग है ये, आज जब भोजन करेंगे तो भोजन की थाली में साथ में एक दूसरी छोटी थाली रखनी है, छोटे सा प्लेट, उसको खाली छोड़ देना है। क्या सोचेंगे, ये किसका है? ये मेरा और ये बाबा का। तो उसमें थोड़ा दो तीन चीजें डाल दो भोग वाली, लास्ट में खुद खा लेना। तो ये बाबा की, ये मेरी, ये हम खा रहे हैं और ये उसके लिए। भोजन करते समय, बनाते समय, करते समय हमारी जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। जैसे एक कसाई है, वो एक गाय को घसीटते हुए ले जा रहा है कत्तल खाने में मारने के लिए, घसीटता है, घसीटता है, घसीटता है, और वो गाय इतनी थक गई है कि अब वो चलने से इनकार कर रही है, और वो आदमी भी थक गया है, वो कसाई भी थक गया है। और एक समय ऐसा आता है कि कड़ी धूप में सुबह से वो गाय चल रही है, वो गाय चलने से मना कर देती है, और कसाई भी थक गया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो उसको घसीट रहा है। तो वो रुक जाता है, बाजू में ही एक होटल है, वहां जाता है, भोजन करता है, फिर उसमें ताकत आ जाती है और फिर घसीटते हुए ले जाता है अच्छे से गाय को। जिसने वो भोजन खिलाया, इस पाप के कर्म में वो भी भागीदार बन गया, क्योंकि वो भोजन खाने के बाद ही उसमें ताकत आ गई।
और इस ताकत की वजह से गाय को घसीटते हुए ले गया और गाय को मार दिया, गौ हत्या की। पर गौ हत्या के इस कर्म में वो होटल वाला जिसने भोजन खिलाया वो भी सूक्ष्म रूप से भागीदार बन गया। इसलिए केवल दर्शा यह रही है कहानी कि भोजन का कितना महत्व है, प्रभाव है, दूर उसके बहुत सारे आयाम, कोई एक बात नहीं है उसके विषय, बहुत सारी बातें। क्यों मन में हलचल उत्पन्न होती है, बाबा को भोग लग रहा है, बाबा की याद में बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, फिर भी वो भोजन के पैसे कहाँ से आ रहे, वो भी एक प्रश्न है। कई लोग तो पैसे क्यों डालते हैं धार्मिक संस्थाओं में, इनकम टैक्स से बचने के लिए। वो पैसा कौन सा है, काला है सफेद है, और जो बना रहे और जो भोग लगा रहे वो कितने समर्पण के साथ लगा रहे हैं कि भगवान उस भोग को, उस भोजन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे। इसलिए चाहे दूसरे कोई लगा रहे नहीं लगा रहे, हम जब खाए व्यक्तिगत तो अपनी शक्तिशाली दृष्टि से उसको शुद्ध करे, समर्पित करे, मौन में, एकांत में, अगर हो सके तो नीचे जमीन पर बैठकर, हो सके तो। तो आज क्या करना है, अपनी थाली में एक छोटी थाली जिसमें सब चीजें रख दो और सोचो कि ये मैं ये खा रहा हूं, बाबा ये खा रहा है, तो हम किसके साथ खा रहे हैं, भगवान के साथ खा रहे हैं। तो आज के ये तीन बातें हैं। पहला तो एक कि मैं और बाप कंबाइंड हूं, दूसरा दो दिल एक मिल रहे हैं, वो अलग नहीं रहे, क्या हो गए, दोनों कंबाइंड हो गए, और तीसरा भोजन। तिलक के विषय में कहीं हमने ये बात पढ़ी है, भक्ति में तिलक के विषय में क्या कहा गया है कि मस्तक पर यदि तिलक नहीं है किसी के, तो भक्ति में शास्त्रों में क्या कहा गया है, जैसे पाठ करते समय अर्थ न समझा गया मंत्र, वह सर जो महापुरुषों के आगे नहीं झुकता, दया भाव से बिना हृदय, मस्तक के बिना तिलक की उपमा दी गई है, कुएं के बिना घर, मंदिर के बिना गांव, नदी के बिना देश, नेता के बिना समाज, दान में न दी गई संपत्ति, शिष्य के बिना गुरु, न्याय के बिना राष्ट्र, योग्य मंत्री के बिना राजा, पति के बिना स्त्री, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है कि तिलक का कितना महत्व है। इसलिए सुबह उठते ही बाबा क्या कह रहे हैं, स्मृति का तिलक लगाओ, स्मृति साथ के स्मृति का तिलक लगाओ, कंबाइंड या तो साथ, हम साथ हैं, भगवान के साथ चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं अर्थात जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता रहे, अर्थात उसके जो महावाक्य है, जो स्टडी है वो होती रहे। और जैसे कहा इसको क्या करना है, प्राथमिकता देनी है, क्योंकि जीवन बहुत अनित्य है, इतनी बाधाएं, इतनी आंधियां, इतनी इतने तूफान आते रहते हैं दिन भर कि उसमें तो बह जाएंगे, कुछ तो चाहिए ना पकड़ने के लिए, किसको पकड़े, उसके वाक्यों को, वो अमृत है, इसलिए पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। हम देखते हैं ओपीडी में लोग बाहर वेटिंग लिस्ट में बैठते हैं ना, तो वहां कुछ कुछ भाई, कुछ कुछ बहनें किताब खोलकर अध्ययन चालू है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी से कुछ बात नहीं करेंगे, चुपचाप अपने पढ़ते रहेंगे, वार्ड में एडमिट होते हैं बुक्स रखी रहती है, पढ़ते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हमारी कुमुद बहन है, उनका 3-4 दिनों में एक पेन खत्म हो जाता है, दिन रात पढ़ाई, लाल पीला नीली पूरी मुरली को, पहले तो क्लास में भी आते थे कमाल है सबसे पावरफुल सिंसियर स्टूडेंट, आवाज बुलंद, कितनी लगन भगवान की पढ़ाई के प्रति। और इसके विरोध में भी बहुत सारे देखते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो ऐसी लगन हो पढ़ाई के प्रति, किसकी ये पढ़ाई है, और उस प्यार में खोए रहना है, उस प्यार में डूबे रहना है। प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है, हम तेरे प्यार में तू साथी हमारा है। आ गए हम कहाँ सितारों का ये जहाँ, चले हम वहाँ बाबा तुम हो जहाँ, चलते हैं हम हंसते गाते। ये जीवन कैसा हो, हंसते हुए गाते हुए नाचते हुए झूमते हुए, बोझ नहीं दुख नहीं दर्द नहीं पश्चाताप नहीं। ये कब होगा, जब मन निर्विकार हो। यदि मन में वासनाएं आंदोलित हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता, चिंता रहेगी। फिर मधुबन की इन गलियों में भंवरे जैसे कलियों में, हम नाचे उड़ते हैं यहाँ, चले हम वहाँ बाबा तुम हो जा। खो गई ये दुनिया सभी अव्यक्त सी ये वाणी तेरी, डूबने का डर ना कोई लौटने की कोई चाहत नहीं। ये सागर किसका है, अमरता का सागर है, इसमें डूब जाओ। मेरा क्या होगा ये प्रश्न ही नहीं है, डूबने का डर नहीं है और लौटने की अब चाहत नहीं। इतना आगे निकल जाओ, इतना आगे निकल जाओ इस पर प्रभु प्रेम में, कि फिर लौटने के सारे मार्ग ही बंद हो जाए। प्यार में खोया हुआ दिल ये हमारा है, हम तेरे प्यार में तू साथी हमारा है। मधुबन की इन गलियों में भंवरे जैसे कलियों में, हम नाचे उड़ते हैं यहाँ, मुरली की धुन है गीत है परवानों के, झूमते हैं दिल जैसे ख्वाब हो ख्वाब है मस्तानों के। आ गए हम कहाँ सितारों का ये जहाँ, चले हम वहाँ बाबा तुम हो जहाँ। तो आज की कविता तैयार है, और आज हमारे बीच में बाबा का एक और अमूल्य रतन शारदा बहन आए हैं। हर एक आत्मा को बाबा ने एक विशेष वरदान दिया है, विशेष वरदान, परंतु हम उस वरदान को कितना तराशते हैं, कितना उस वरदान पर काम करते हैं, और कितना उस वरदान को साकार बना देते हैं। बाबा ने क्या किया, बीज उसमें धूप कितना उस पर काम करते हैं, स्मृति में रखते हैं, उसको कितना सफल करते हैं। तो कविता के बाद शारदा बहन जी भी इधर आएंगे, और बाबा ने जो एक अद्भुत दिव्य कहेंगे या फिर अलौकिक आवाज उनको जो दी है, ऐसी आवाज जिसको सुनते सुनते ही दिल खो जाता है और एक अद्भुत से दिव्य लोक में प्रवेश कर जाता है, प्रभु प्रेम में खो जाता है। तो पहले कविता सुनेंगे, कविता का टॉपिक है आनंद गंगा।
गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आत्मा रूप में ज्योति बिंदु, आत्मा रूप में ज्योति बिंदु, परम पिता से जोड़ बनाऊं। आत्मा रूप में ज्योति बिंदु, परम पिता से जोड़ बनाऊं। ज्ञान योग की मधुर धारा में, ज्ञान योग की मधुर धारा में, हर क्षण आनंद गंगा पाऊं। ज्ञान योग की मधुर धारा में, हर क्षण आनंद गंगा पाऊं। क्रोध द्वेष सब दूर हो जाए, क्रोध द्वेष सब दूर हो जाए, स्नेह सुगंध जीवन महकाए, स्नेह सुगंध जीवन महकाए। विकारों से जब मन निकले, विकारों से जब मन निकले, पावन लहरे भीतर झलके, पावन लहरे भीतर झलके। न बाहर मंदिर न तीर्थ तलाशु, न बाहर मंदिर न तीर्थ तलाशु, सच्चा धाम तो स्मृति में पाऊँ, सच्चा धाम तो स्मृति में पाऊँ। न बाहर मंदिर न तीर्थ तलाशू सच्चा धाम तो स्मृति में पाऊ शिव बाबा संग जब मन लग जाए आनंद गंगा अमृत बरसाए शिव बाबा संग जब मन लग जाए आनंद गंगा अमृत बरसाए सच्चाई की शक्ति से सच कर सच्चाई की शक्ति से सच कर प्यार की किरणें जग में फैली प्यार की किरणें जग में फैली हर आत्मा जब निर्मल हो जाए हर आत्मा जब निर्मल हो जाए धरती भी बन जाए स्वर्गमयी आनंद गंगा अमृत बरसाए सच्चाई की शक्ति से सच कर प्यार की किरणें जग में फैली हर आत्मा जब निर्मल हो जाए धरती भी बन जाए स्वर्गमयी ओम शांति।
एग्जाम थी, उस एग्जाम में ये मधुबन निवासी है जिन जो कि फुल 100 out of 100 मार्क्स मिले, बाकी जो है किसी को 99, किसी का एक गलत हुआ है। तो ये एक जो था वो टेक्निकल एरर था उसकी वजह से। तो 100 out of 100 में दो भाई है, एक तो अरविंद भाई है और शंभू भाई है। बाकी बहनों में जो टॉपर है 100 out of 100 में, त्रिवेणी बहन जी, मंजू बहन जी, हॉस्पिटल से सपना बहन जी, डॉक्टर रम्या बहन जी, गायत्री बहन जी इधर ही है, ये सब 100 out of 100 है। फिर संगीता बहन, नम्रता बहन मधुबन से, दोनों 100 out of 100। फिर तन्वी बहन जी और बीना बहन जी, तो ये सब मधुबन से, माउंट आबू मतलब से है, राजस्थान से तो जिनको फुल मार्क्स मिले हैं। कुछ कारणों से 49 उनका आया था पर वो 100 था। तो शारदा बहन जी, तो कविता होगी कि और भी है? होगी ना, हाँ 2 मिनट आज जाने वाले हैं। एक बार तो 11 बजे उठ गए थे और जाने के लिए तैयार हो गए मधुबन रात को, उनको लगा कि 1:30 बज गया है देव भाई घबरा गए।
नहीं भाई साहब ने जी 2 बजे से 5 बजे जब योग का कहा तो जाने का मार्ग ही नहीं था ना, वहां ही नहीं थी कुछ। पर सुखदेव भाई को बहुत परेशान किया हमने बराबर 2 बजे आते थे वो, सुखदेव भाई नहीं थे तो दिव्या बहन और समीक्षा बहन, वो भी 2 बजे हमको 8-10 दिन उन्होंने भी पहुंचा दिया। अभी बहुत बहुत सारा, अभी जाने का दिन आ गया आज अभी जा रहे अब बहुत दिन 3.5 महीने हो गए।
तो बाबा के बहुत सारे गीत शारदा बहन जी ने गाए हैं और अभी नीचे मीडिया कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली है, कब है, 26 से, तो उसमें आए हैं, वहाँ पर भी उनके 5-6 गीत है और अपने लौकिक पिताजी के साथ आए हैं, आप भी आ जाएंगे। तो थोड़ा 2 मिनट अनुभव भी सुना के फिर एक गीत गाएंगे।
ओम शांति। ते उमंग उत्साह से भाई जी क्लास कराते, मेरे को आवाज़ इतनी सी मिलती ओम शांति की। ओम शांति, ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, भाई जी का शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अभी तक मुरली की टेस्ट चल रही थी, आज हमारी टेस्ट चालू हो गई है यहाँ पर। ज्ञान में आए हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, पिताजी बहुत सालों से हैं, बहुत पहले से बोल रहे थे चलो सेंटर चलो, पर था ठीक है जाएंगे, समय होगा तब जाएंगे। तो समय कुछ ऐसा ही फिरा, मतलब इतना जोर से कुछ एक समय का झटका लगा तो हम पर ज्ञान में आए हैं। और ऐसा हुआ कि उस समय भाई जी से अचानक से बातचीत शुरू हुई, तो ज्ञान के साथ साथ भाई जी के लिखे हुए गीतों का भी काफ़ी नशा रहता है। हम जब बाकी गीत भी गाते हैं, दूसरे और भी यज्ञ के जितने भी गीत हैं, उससे देखा जाए तो भाई जी के गीत ज़्यादा पावरफुल लगते हैं हमको। अब गा के तो हम भेजते हैं, अब आप सबको कैसा लगता है हमको नहीं पता। भाई जी ने अभी एक गीत पढ़ा था, खो गए हम कहाँ,
हार में खोया हुआ जीत हमारा है, हम तेरे प्यार में तो साथ ही हमारा है, आ गए हम कहां, सितारों का ये जहां, चले हम वहां, बाबा तुम हो जहां, चलते हैं हम हंसते गाते सुहाने नजारे हैं, हम हैं वहां तुम हो जहां, मधुबन की इन गलियों में भवे जैसे कलियों में, हम नाचे उड़ते हैं यहाँ, चले हम वहां, बाबा तुम हो जहां, खो गई है ये दुनिया सभी, अव्यक्त सी है वाणी तेरी, डूबने का अब डरना कोई, लौटने की अब चाहत नहीं, प्यार में खोया हुआ दिल ही हमारा है, हम तेरे प्यार में तो साथ ही हमारा है, आ गए हम कहां, सितारों का ये जहां, चले हम वहां, बाबा तुम हो जहां।
ओम शांति।
ओम शांति। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर थे। अभी कुछ दिन पहले मैं भियाल लिखा हूँ। एक्चुअली सिंगारी इसको छोटा 3 साल से मैं गाना सिखाने के लिए कलकत्ता मुंबई लेके जाना पड़ता था। समय भी नौकरी में भी ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता था, इसमें भी प्रॉब्लम आता था, इस कारण मैं बिहार लिख दिए। और इसको क्या बाहर में भी इनका गाना रहता है, रिकॉर्डिंग रहता है, समय देना पड़ता है। ओम शांति।
मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। आमले तप की मशाले तोड़ दे, नींद की जंजीरे थाम ले, तप की मशाले पाड़ दे, आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल उठ चल कर तम से दुनिया
बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा। तू जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक